बाल गोविंद भगत पाठ का दूसरा भाग प्रस्तुत है। पाठ को समझाने के लिए अन्य बिंदुओं का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। नंबर एक, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व इस प्रकार दर्शाया गया है। 60 वर्षीय भगत एकदम गोरे चिट्टे मझोले कद के व्यक्ति थे, जिनके बाल पके हुए थे। उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था, किंतु सन्यासियों के तरह जटाजूट बाल में नहीं रखते थे। वे कपड़े कम पहनते थे। कपड़े के नाम पर उनकी कमर में लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी होती थी। सर्दियों के दिनों में काली कमली ओढ़े रहते थे। माथे पर रामानंदी तिलक लगा रहता था। गले में तुलसी की बनी बेडोल माला डली रहती थी। इस तरह साधु वेश में रहते थे। उनका जीवन आदर्श साधुता से परिपूर्ण था। नंबर दो, बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे। उनका साफ सुथरा मकान था, फिर भी सर्वथा वे साधुता की श्रेणी में गिने जाते थे, क्योंकि वे कबीर के पथ पर चलते थे, कबीर के पदों को ही गाते थे, उनके आदेशों पर चलते थे। वे सभी से खरा व्यवहार रखते थे। दो टूक बात करने में न कोई संकोच करते थे, न किसी से झगड़ते थे। वे अन्य किसी की चीज़ को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। वह अपनी प्रत्येक वस्तु पर साहब का अधिकार मानते थे। परिश्रम से पैदा की गई फसल को पहले साहब को और अर्पण करते थे, उसके बाद स्वयं प्रयोग करते थे। इस प्रकार त्याग की प्रवृत्ति और साधुता का व्यवहार उन्हें साधु की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता था। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या प्रत्येक कार्य आश्चर्यजनक होता था। उस दिनचर्या में कहीं भी चूक उनके द्वारा संभव नहीं थी। जैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने साधुता की कभी नहीं छोड़ा। भूलकर भी दूसरे की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। अपने पालनीय नियमों को इतनी बारीकी तक ले जाते थे, जिससे देखकर लोगों को कौतूहल होता था। भोर में नित्य 2 मील दूर जाकर नदी स्नान कर लौटना हमेशा की तरह दिनचर्या में था। शरद ऋतु में नदी में नहाकर पोखर पर टेर लगाते देखकर लोगों को आश्चर्य होता था कि दांतों को कपकपा देने वाली ठंड में केवल कमली ओढ़े कुश के आसन पर खंजड़ी बजाते थे। शरद ऋतु में दांत किटकिटाने वाली ठंड में टैर लगाते खंजड़ी बजाते समय उनके माथे से श्रम बिंदु चमक उठते थे। उपवास रखकर पैदल ही 30 कोस दूर गंगा स्नान पर जाते और रास्ते में बिना कुछ खाए घर लौटते थे। लोग आश्चर्य किए बिना नहीं रहते थे कि 4-5 दिन की पैदल यात्रा और उपवास के बाद भी उनके मस्ती और उमंग में कोई कमी न आती। मरणासन स्थिति में वही जवानी वाली आवाज, वही नियम लोगों को अवाक किए बिना नहीं रहते थे। नंबर चार, धान की रोपाई। धान की रोपाई के समय भगत अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे होते थे तो इनके स्वरों की गूंज से आसपास के लोगों के हृदय कुछ इस तरह मचल उठते थे। आषाढ़ मास की रिमझिम वर्षा, आकाश में बादल, ठंडी पुरवाई हवा के बीच कहीं से कानों को झंकृत कर देने वाली स्वर लहरियां सुनाई देती थीं। कीचड़ में लिथड़े भगत जब धान की रोपाई कर रहे होते थे, धान के खेत पौधों को पंक्तिबद्ध बैठा रहे होते थे तो उनका कंठ स्वर फूट पड़ता। उनके कंठ से फूटता हुआ स्वर ऐसा जान पड़ता कि एक स्वर से दूसरे स्वर को मिलाए जा रहा है और दूसरा स्वर लोगों के कान की ओर जा रहा है। स्वर कान में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे झूम उठते। खेत की मेड़ पर कलेवा लिए बैठी हुई औरतों के होठ स्वयं ही स्वाभाविक रूप से कंपन करने लगते। खेतों में हल हाँकते कृषकों के पैर एक ताल से उठने लगते। खेतों में रोपनी करने वालों की उंगलियां विशेष क्रम में चलने लगती। नंबर पाँच, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत की भावनाएं। भगत की अपने बेटे की मृत्यु पर भावनाएं परंपरा से भिन्न थी। उन्होंने अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की कि मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिरहाने एक दीपक जलाकर रख दिया। उसके समीप आसन पर बैठकर हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने लगे और पतोहु को समझाने लगे। आत्मा परमात्मा में मिल गई है, विरहिणी अपने प्रेमी ईश्वर से जाकर मिल गई है। पतोहु को समझाते, यह समय रोने का न होकर उत्सव मनाने का है। नंबर छः, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू के विचार। भगत के पुत्र की मौत से आहत पतोहू अपना शेष जीवन भगत की सेवा करते हुए बिताना चाहती थी। अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए भगत ने पतोहू को उसके भाई के साथ भेजते हुए उसका पुनर्विवाह का आदेश दे दिया। पतोहू का हृदय चित्कार कर उठा। वह भगत को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि बुढ़ापे में भगत को कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़े तो कौन सहारा देगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा, पुत्र की मृत्यु होने से घर में अकेले कैसे रहेंगे। इस प्रकार पतोहू भगत का सहारा बनकर वहीं वैधव्य जीवन काटना चाहती थी। इस प्रकार बाल गोविंद भगत का सारांश प्रस्तुत किया गया है। अब इससे संबंधित नीचे लिखे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए।